चारित्रमोक्षम ना लेक्चर नंबर 16। आचार्य श्री निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस लब्धिसार सपनासार ग्रंथ की रचना की है। उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लब्धिसार सपनासार ग्रंथ की रचना की है, जो ढूंढारी भाषा में की है, और उसके हिंदी अनुवाद के आधार से यह हम चारित्रमों की उपशमना का प्रकरण देख रहे हैं। यहाँ उपशम विधि यहाँ शुरू हो गई अंतर करने के बाद। नपुसक वेद का उपशम पहले होता है, फिर स्त्री वेद का उपशम होता है, उसके बाद पुरुष वेद और छह नौ कषाय, इनका एक साथ उपशमने का कार्य चलता है। यहाँ बात यह है कि नपुसक वेद का हमने ऐसा लिया कि उसका उदय हो या नहीं हुआ, उसका बंध तो नहीं था, स्त्री वेद का भी बंध नहीं था, हास्यादि छह का भी बंध नहीं था, पर पुरुष वेद का यहाँ बंध होता था। तो पुरुष वेद का उदय भी चल रहा है और जिसके उदय के अंतिम समय तक उसका बंध भी हो रहा है। पुरुष वेद का उदय है तब तक पुरुष वेद का बंध भी है। अब यहाँ बंध के बाद एक आवली तक तर कुछ उसमें उपशमाने का कार्य नहीं हो रहा, और आवली के बाद भी यहाँ पर उसकी जितने आवली के जो असंख्यात समय है उतनी उसमें उपशम की फालियां भी होगी, यानी उतने फालियों में जाकर वो पूरा द्रव्य उपशमित होता है। परंतु जो लास्ट लास्ट में जो बंदी है तो उसकी इतना उसको फुर्सत नहीं मिली ना उपशमाने की। एकदम अंतिम समय में जो बंधा है वो अभी उसकी बंधावली जाएगी, फिर उपशमना यानी फिर और एक आवली जाएगी, तब जाके उसका उपशम पूरा हो जाएगा। तो ये जो अभी नहीं उपशमित हुए, जो किसी के एक फाली बाकी है, किसी की दो फाली बाकी है, किसी की तीन फालियां बाकी है, ये जो उपशमित नहीं हुई, जो अपगत वेद यानी अभी वेद का उदय खलास हो गया, उसके बाद अभी जो क्रोध का उपशम काल चलेगा उसी काल में शुरुआत में इनका भी उपशम होगा। तो ये जिसका नहीं हुआ है उपशम, ऐसे जो यहाँ के समय प्रबद्ध है यानी अनेक समयों में बंधे हुए जो समय प्रबद्ध है, तो उनका नाम है नवक समय प्रबद्ध। ये प्रश्न था ना नवक समय प्रबद्ध, फिर समझाइए। ये नवक समय प्रबद्ध की बात अभी यहाँ समझाएंगे, पुस्तक के आधार से और बोर्ड के आधार से हम उसको समझाएंगे। तो यहाँ 182 पेज है, नया पैराग्राफ। यहाँ ऊपर क्या लिखा था, एक समय कम दो आवली मात्र समय प्रबद्ध उपशमित नहीं होते। तो एक समय कम दो आवली ये प्रमाण कहाँ से निकाला, उसकी ये चर्चा है। देखिए, उपशम काल के अंत की दो आवली का नाम द्विचरमावली और चरमावली है। अंतिम दो आवली किसके उपशमने की, यहाँ उपशम ऊपर चल रहा था और नीचे उदय चल रहा था। तो मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये यहाँ ये बंद है, इन्हें पुरुष वेद का उदय यहाँ तक था, उल्टा गिन रहे हैं हम। हाँ चलेगा, यहाँ उसको ABCDEFGH ऐसे नाम दिए। फिर एच वाला जो समय प्रबंध है वो अंतिम समय में बंधा हुआ है, यहाँ तक पुरुष वेद का उदय था उस समय ये समय प्रबंध बंधा था, उसका नाम है एच। उसके पूर्व समय में वाला वो जी था, ऐसे 1, 2, 3, 4 ये चरम आवली उल्टे क्रम से देखिए, ये अंतिम आवली पुरुष वेद के बंध होने की अंतिम आवली, और ये उसके पूर्व की आवली बी सी डी और ए, यानी इन इतने का क्या होता है, तो ए वाला जो समय प्रबद्ध है ये उसका बंध का समय है, हमने चार समय की आवली मान ली है मानने के लिए, तो इसका यहाँ से लेकर 1, 2, 3, 4 ये इसकी बंधा हुई है, और अभी ए का एक फाली यहाँ उपशमित होगी, एक ही दूसरी फाली उपशमित होगी, एक ही तीसरी फाली उपशमित होगी, एक ही चौथी फाली उपशमित होगी, यानी जिस समय पुरुष वेद का उदय है उस समय तक तो ए नंबर वाली सभी उपशमित हो गई, वो नवक समय प्रबद्ध में नहीं गिनेंगे, उसके सभी फालियां उपशमित हो गई, वो पूरा का पूरा समय प्रबद्ध उपशमित हो गया, परंतु यानी इसको छोड़ दो, परंतु अभी जो बी सी डी ई एफ जी एच यानी कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात यानी 8 में एक कम, यानी 2 अवली में एक कम, इतने का पूरा उपशम नहीं हुआ है, क्यों? वी का यहाँ बंध है तो 1, 2, 3, 4 यहाँ तक तो उसका उपशम शुरू नहीं हुआ, यहाँ से वी की पहली फाली उपशमित हुई, यहाँ दूसरी तीसरी चौथी, ये यहाँ उसका उपशम पूरा होगा, पर ये तो कब होगा, वो तो यानी अवैध भाग के पहले समय में, अब ये जो यहाँ बंधेंगे सी 1, 2, 3, 4 इतने समय के बाद यहाँ C1 फिर C2 C3 C4 यहाँ जाके दूसरे समय, यहाँ 1, 2, 3, 4 नाम है ना, यानी ये तो अपगत वेद होने पर पहला दूसरा तीसरा समय ऐसे नाम दिए, यानी दूसरे समय में जाकर C4 यानी सी की अंतिम फाली यहाँ उपशमित हो जाएगी। अब जो D यहाँ बंधा है 1, 2, 3, 4 कितने के बाद यहाँ D1 शुरू हुआ, इसके लिए भी 4 समय लगेंगे, तो ये D4 यहाँ तीसरे समय में पूरा उपशमित हो जाएगा। इस तरह से जो जो बंधे हुए हैं वो अपने अपने 4 समय छोड़कर ऊपर 4 समयों में जाकर उपशमित हो गए। जो अंतिम समय में बंधा था H नाम का जो समय प्रबद्ध है उसका 1, 2, 3, 4 और आगे 1, 2, 3, 4 यहाँ उसका उपशम पूरा हुआ, क्योंकि यहाँ जगह नहीं था, H1 है, H2 है, H3 है, H4 है, बोले टाइम नहीं तो वहाँ जाके उसका उपशम पूरा हुआ, तो वो सातवां नंबर है, नहीं सातवां समय है, 7 समय का अर्थ है 1 समय कम 2 आवली, तो 1 समय कम 2 आवली में सारे उपशमित हो गए, ये उसका अर्थ है। ये केवल पढ़ने से ख्याल में नहीं आता, इसलिए उसको ABCD नाम दिया तो समझने में आसान हो जाता है। देखो अभी पढ़ेंगे हम इसको, अब चरमावली किसको, अंतिम आवली को चरमावली, अब यानी हम उसको उल्टा गिन रहे हैं, H G F और E ये चरमावली और उसके ये द्विचरमावली, उल्टे देख रहे हैं ना, लास्ट जो बंदे हैं उसकी बात कर रहे हैं, अभी पढ़ेंगे देखो H लास्ट। देखो उपशम काल के अंत की 2 आवली, अंतिम आवली है उपशम काल की अंतिम आवली थी ये 4 और ये द्विचरम आवली है, द्वितीय आवली है, द्विचरम आवली और चरम आवली है, द्विचरम आवली के प्रथम समय में बंधा हुआ समय प्रबद्ध, ये द्विचरम आवली का प्रथम समय जिसको हमने ए नाम दिया, समझ में आती है, क्योंकि केवल पढ़ने से कुछ नहीं समझ में आता है, आवली को हमने 4 समय मान लिए हैं और उसको हमने ABCD नाम दिए, ये द्विचरम, ये चरम आवली और ये द्विचरम आवली और उसका ये पहला समय, यानी जो ए नाम का समय प्रबद्ध है, तो ए द्विचरम आवली के प्रथम समय में बंधा हुआ समय प्रबद्ध जिसको हमने ए नाम दिया है, बंधावली व्यतीत होने पर, यानी वो 1, 2, 3, 4 4 समय वो बंधावली है उसकी बंधावली 4 समयों की है, चरमावली के प्रथम समय से लेकर प्रति समय एक एक फाली का उपशम करके चरमावली के अंत समय में सर्व उपशमित हुआ, यानी ए समय में जो बंधा हुआ समय प्रबद्ध है अपने समय से 4 समय ये गिने और आगे के 4 समय आवली के हमने माने हैं 1, 2, 3, 4 इसकी सभी फालियाँ उपशमित हो गई। यह हमारी कल्पना है, चार समयों की आवली मानी है हम, असंख्यात को कहाँ बताएंगे। ख्याल में आई बात? हाँ, ये चार हमने माने हुए, आवली के लिए हमने चार संख्या मानी, छोटी संख्या माने बिना ये बात ख्याल में नहीं आती है, इसलिए चरम मैंने लास्ट अंतिम। अंग्रेजी बोलते तो आसान हो जाता है, लास्ट और लास्ट बट वन, यानी चरम और द्विचरम। यानी जो लास्ट से जो आठवें समय में द्विचरम का पहला समय, ये द्विचरम का पहला समय, यानी ए नंबर ए नाम याद रखो ना, तो चार समय तो उसके बंदावली के गए और आगे चार फालियों में पूरा उपशमित हुआ, यानी पुरुष वेद के अंतिम समय तक उसका पूरा उपशम पूरा हो गया, यानी बाद में उसका कुछ बाकी नहीं रहा। परंतु अभी जो बी वाला है, बी वाले की क्या पोजीशन होगी, वो चार समय तो यहाँ बीत गए, उसकी एक फाली दो फाली तीन फाली उपशमित हुई, चौथी फाली उपशमित नहीं हुई, अंतिम फाली वो बाद में एक समय में उपशमित हो जाएगी। पुरुष वेद बंधना रुक गया है, पुरुष वेद बंधना रुक गया है, पहली स्थिति में कोई पुरुष वेद नहीं है, पहली स्थिति में क्रोध का उदय चल रहा है, ये सब खत्म हो गई, सब खत्म हो गई, हाँ उसमें कुछ नहीं बचा है,
वो जो नीचे है
कुछ वो सब निकल गया, वो उदय होकर चला गया, जब तक उसका उदय था तब तक उसका बंध था, अब उदय भी नहीं है, नया बंध भी नहीं, पर लास्ट क्लास में जो बंधा था उसका क्या हुआ उसकी चर्चा चल रही है। यानी वो अपगत, यानी वो अवैध भाग होने के बाद अब वो उसका उपशम चलेगा, कुछ खालियों का जो नहीं हुआ है वो अब जाके होगा, यानी एक समय कम दो आवली में सारे ही जो है किसी के एक फाली किसी के दो फाली सब उपशमित हो जाएगा, यानी उसका उपशम बाद में पूरा हो जाएगा, जिस समय उसका उदय रुक गया उसी समय उसका उपशम पूरा नहीं हो सकता, जो लास्ट लास्ट में जो नए नए बंधे हैं उसके लिए उपशम होने को कहाँ फुर्सत मिली, वो तो बाद में हो जाएगा, ये उसका समय है, जो वहाँ बनती है ना उसके बारे में ऐसा ही होगा। अब तो पुरुष वेद की बात कर रहे हैं, जब क्रोध का नंबर आएगा तो वहाँ पर भी ऐसा ही कहेंगे, वहाँ क्रोध का लास्ट लास्ट में जो बंध हुआ था उसके बारे में भी यही शब्द आएगा, नवक समय प्रभाव।
हाँ,
पुराने का उपशम हुआ और नए नए बंधने वाले जो उपशम बाकी है वो जो नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होता है उसके स्टार्ट में ये भी होता है वो भी होता है, इसके लिए कुछ अलग से समय नहीं देना पड़ता। अब यहाँ से पढ़ेंगे, देखो ये चार लाइन हो गई उस पैराग्राफ की, पुनः द्वि चरमावली के द्वितीय समय में जो समय प्रबद्ध बंधा था उसको हमने द्वि नाम दिया है, ये नाम देने से जरा मुझे आसान हो गया समझाने के लिए। वह बंधावली व्यतीत होने पर, यानी चार समय, यहाँ से चार समय गिनो, एक दो तीन चार, अब यहाँ उसकी पहली फाली उपशमित होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और वह अपगत वेद होने पर एक समय में वो पूरा उपशमित हो जाए नेक्स्ट समय में। तो बंधावली व्यतीत होने पर चरमावली के द्वितीय समय से लेकर चरमावली के अंत समय तक अन्य सर्व फाली तो उपशमित हुई परंतु एक अंत फाली उपशमित नहीं हुई। ये जो अंतिम समय है पुरुष वेद के बंध का और उदय का, ये अंतिम समय था। अब ये जो दी वाली एक फाली उसकी उपशमित नहीं हुई थी, बाकी तो सभी उपशमित हुई थी, एक फाली बची थी वो नेक्स्ट समय में हो जाएगी। हम तो यहाँ चार समय माने, वहाँ तो असंख्यात समयों की आवली है, चार समयों में समझे तो भी बहुत हो गया। इसी तरह द्विचरमावली के तृतीयादि समय में बंधे हुए, तृतीयादि यानी उसकी जो बंधा है वो चार समय तक उसमें कुछ नहीं होगा, पांचवें समय से C1 C2 C3 C4 चार समय में पूरा उपशित हुए, यानी अपगत वेद होने पर दूसरे समय में वो उपशमित हो गया। वहाँ मैंने समयों के नंबर दिए अवगत वेद होने के बाद, और यहाँ मैंने ABCD नाम दिए। तो देखो इसी तरह द्विचरमावली के तृतीयादि समयों में बंधे हुए समय प्रबद्ध बंधावली व्यतीत होने पर, यानी हमने उसको बंधावली ने चार चार समय समझे, तो उसके व्यतीत होने पर चरमावली के तृतीय समय से लेकर अंत समय तक, देखो ये यहाँ बंधा है, एक दो तीन चार, अब ये यहाँ से लेकर ये सीवन यहाँ से शुरू हुआ, फिर ये एक एक फाली करके उपशमित हो जाएगी। अंत समय तक के समयों में अन्य फाली तो उपशमित हुई, परंतु क्रम से अंत की दो तीन चार आदि फाली उपशमित नहीं हुई, यानी किसी के देखो एक फाली उपशमित नहीं हुई, इसके बाद किसी के एक फाली उपशमित नहीं हुई थी चौथी, किसी के तीसरी और चौथी दो फाली उपशमित होने की बची थी, किसी को एक दो तीन फालियाँ बची थी, किसी को चार फाली, किसी की भी चार फाली, इसकी भी चारों फाली, इसकी भी चारों फाली बाकी, पूरा समय प्रबद्ध, कहीं एकाध फाली बाकी थी और कहीं पूरा समय प्रबद्ध बाकी। ऐसा भी पूछेंगे एक फाली बाकी उसको भी नवक समय प्रबद्ध क्यों कहा, तो एक फाली को ही पूरा समय प्रबद्ध कहकर ये सारे ही समय प्रबद्ध उपशमित नहीं हुए ये कहने की पद्धति। पूरा का पूरा समय प्रबद्ध किसका नहीं उपशमित हुआ है, जिसको चारों बाकी है ना, देखो ये ई वाला है, एफ वाला है, जी वाला है, एच वाला है, इसका कुछ नहीं उपशमित, वो सबके सब बाकी थे, परंतु बी की एक ही फाली बाकी थी, सी की दो फाली बाकी थी, डी की तीन फाली बाकी थी, ये इस तरह से उसका अर्थ समझते। यहाँ तो हमने चार समयों की आवली मानी थी तो इतने ही बचे, वहाँ असंख्या समयों की आवली होती है तो उतने समय प्रबद्ध किसी के एक फाली, दो फाली, तीन फाली, असंख्या फाली, इस तरह से ये उपशमने का कार्य बाद में होगा, ये इसका अर्थ है। वहाँ इसी क्रम से द्विचरमावली के अंत समय में बंधे हुए समय प्रबद्ध की चरमावली के अंत समय में एक फाली उपशमी, अवशेष उपशमी नहीं। ये द्विचरमावली के अंतिम समय में ये डी, ये चरमावली, ये द्विचरमावली, उसके अंतिम समय प्रबद्ध ने डी, तो डी के बाद यहाँ डी एक दो तीन चार, और यहाँ पर उसकी एक ही फाली उपशमित हुई, बाकी सभी फालियाँ बाकी उपशमित हुई, ये उसका अवशेष उपशमी नहीं। इसी पर इस प्रकार द्विचरमावली में बंधे समय प्रबद्धों की फाली नहीं उपशमित हुई। अब चरमावली की बात है, चरमावली ने ई एफ जी एच की बात करेंगे। पुनश्च चरमावली के प्रथमादि सर्व समयों में बंधे हुए समय प्रबद्धों का कुछ भी द्रव्य का उपशम हुआ नहीं। देखो इसको नाम क्या दिया हमने, ए बी सी छोड़ दो, ई एफ जी एच, तो यहाँ यहाँ तक डी वन यहाँ हुआ था पर ई तो नहीं आया था, तो ई एफ जी एच इनमें से कुछ भी नहीं उपशमित हुआ, ये उसका, क्योंकि उनकी बंधावली व्यतीत नहीं हुई है। उसके ऊपरवर्ती उच्चिष्ठावली में पुरुष वेद का बंध भी नहीं है और उदय भी नहीं है, इस तरह पुरुष वेद के उपशम काल के अंत समय में द्विचरमावली के तो एक समय कम आवली मात्र और चरमावली के संपूर्ण आवली मात्र दोनों मिलकर एक समय कम दो आवली मात्र समय प्रबद्ध उपशमित नहीं हुए। ये समझ में आई बात, क्योंकि यह तो एक दो तीन चार चार हमने देखे थे, तो किसी के एक फाली, किसी के दो फाली, इस तरह से कितने समय प्रबद्ध उपशमित नहीं हुए हैं, एक समय कम दो आवली प्रमाण काल में बंधे हुए, यानी बी से लेकर एच तक, ये उस तक कोई आधा अधूरा उपशमित हुआ है, कोई पूरा उपशमित नहीं हुआ है, तो इस तरह से कितने निषेध बाकी है, कितने समय प्रबद्ध बाकी है, एक समय कम दो आवली, ये उपशमित नहीं हुए है। यहाँ अंश को अंशीवत कहना इस न्याय से उपशमित नहीं हुई समय प्रबद्ध की फाली को समय प्रबद्ध कहा, क्या कहा, अंश को अंशी कहा। यहाँ जो बी फोर एक ही फाली नहीं उपशमित हुई, फिर भी यहाँ कहेंगे बी नाम का समय प्रबद्ध उपशमित नहीं हुआ, ये फाली को पूरा समय प्रबद्ध कहने में आ रहा है उपचार, ये उपचार की तो बात मालूम है, द्रव्याण युग में तो ये उपचार बहुत ठिकाने आता है ना।
हाँ
आवली काल में हो रहा है, आवली काल में उषम पूरा हो रहा है। अभी वैसे भी अंतर्मुख में तो हुआ ही था, वहां तो कितने पड़े थे अंतकोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जो पड़े थे, उसमें भी पूर्व पूर्व में बंधे हुए, तो वहां पर भी पूर्व में लगा सकते हैं आप अपने अपने बंधन काल के बाद वो उछमने का कार्य। यहाँ तो टोटल सभी एक खाली दो खाली करके उपशमित हुए थे, अंतर्मुख में पूरे उपशमित हो गए थे। ये नए नए बनने वाले को एक आवली काल पूरा हो जाता है, अपनी बंधावली पूरा होने के बाद एक आवली काल में वो उत्समित हो जाते हैं। ऐसे भी उनकी संख्या या उनके परमाणु की संख्या भी कम है। अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 183 पेज नंबर 263 की टीका। उस पुरुष वेद के उपशमन काल तक सवेद अनिवृत्तिकरण है, यह नव समय प्रगति की बात नहीं। पहले सवेद यानी वेद का उदय है, उसको सवेद कहेंगे, और यह अनिवृत्तिकरण नवा गुणस्थान चल रहा है। हमने नवे गुणस्थान के भाग देखे, पहला भाग को हम सवेद कहते हैं, फिर अपगत वेद हो जाता है। अपगत यानी अभी वेद का उदय मिट गया, उसको कहेंगे अपगत वेदी, और उसके पहले सवेद भाग कहेंगे। यानी पहले से लेकर नवे के प्रथम भाग तक वेदों का उदय पाया जाता है, ये यहाँ इसका अर्थ होता है। अब उसके अंत समय में, अब यहाँ बंध कितना हो रहा है उसकी बात करें, पुरुष वेद का 16 वर्ष मात्र, संज्वलन चतुष्क का 32 वर्ष मात्र, क्योंकि यहाँ क्रोध मान माया लोभ चारों का बंध यहाँ पर कितना हो रहा है, जिस समय पुरुष वेद का अंतिम बंध है, इसके बाद पुरुष वेद का बंध रुकने वाला है, तो उसका 32 वर्ष का बंध हो रहा है, और सॉरी 16 वर्ष का बंध हो रहा है, 32 वर्ष तो उत्तर पे समय होता है, यहाँ 16 वर्ष का बंध हो रहा है, और संज्वलन चतुष्क का उससे दो गुण 32 वर्ष हो रहा है। अन्य कर्मों का संख्या 1000 वर्ष मात्र, वो पहली बात आई थी ना 32 वर्ष के बाद, अभी कटौती अंतर्मुक्त अंतर्मुक्ति होगी, ये इस कॉन्टेक्स्ट में आएगा, क्योंकि इसके बाद वो 16 वर्ष के बाद तो 16 इसका बंध तो रुक ही जाने वाला है। अब बंधाक्षर किस में होगा, संज्वलन में होगा, तो वो कितना होगा अंतर्मुक्त अंतर्मुक्त होगा। यहाँ इधर ये 16 वर्ष मिनिमम उपशम श्रेणी में, ये मिनिमम बंध है, शपक श्रेणी में इसी पॉइंट पर 8 वर्ष का बंध होगा, ये मिनिमम, उसके कम होगा नहीं, उसके वो आगे बंध ही नहीं होगा। ये पुरुष वेद का बंधने का अंतिम समय, शपक श्रेणी की बात यहाँ नहीं है, उपशम श्रेणी की अपेक्षा बात करें,
किसी को ज्यादा वर्ष का भी बंध हो सकता
है, नहीं, सबके परिणाम एक समान, सबके बंध एक समान, सबके कांडक एक समान, सबकी स्थिति एक समान, सब कुछ यहाँ एक समान चल रहा है, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान है। आयु नहीं अलग, आयु अलग अलग है, लेशा अलग, लेशा तो शुक्ल लेशा है, परंतु कषाय का उदय किसी किसी का अलग है, कोई पुरुष वेद का उदय है, किसी का स्त्री वेद का उदय है, कोई क्रोध का उदय है, कोई मान का उदय है, योगों में कोई मनोयोग वचन योग है, शरीर की अवगाहना अलग अलग होगी, कलर अलग अलग होगा, संस्थान अलग अलग होगी, उससे कुछ लेना देना नहीं विशुद्धि से। यहाँ विशुद्धि की अपेक्षा जो बात चलती है वो सबकी समान है, क्रोध मान में कोई भी उदय हो, यहाँ विशुद्धि में वो सम्यक और चारित्र संबंधी जो कुछ संयम लगती है उसकी बात लेना है। आगे बढ़ते हैं, यानी पुरुष वेद का 16 वर्ष, संज्वलन चार का 32 वर्ष, अन्य कर्मों का संख्या 1000 वर्ष, अभी वो संख्या छोटे ये नहीं आया, अभी संख्या 1000 वर्षों तक, उनमें अल्प तीन घाती कर्मों का, उससे संख्या गुणा नाम गोत्र का, उससे साधिक वेदनीय का होता है। अब देखो 264 की टीका पढ़ते हैं। पुरुष वेद की अंतरायाम के नीचे कही थी जो प्रथम स्थिति, अभी फिर थोड़ा पहले जा रहे हैं, यानी जब अंतर किया था तो प्रथम स्थिति अंतर्मुख प्रमाण बनाई थी पुरुष वेद की, अब वो घटती गई तो वहाँ तो अनुभव कांड स्थिति कांड भाग कोई नहीं हो रहे थे, परंतु ऊपर के द्वितीय स्थिति में से आवाज होकर परमाणु नीचे आ रहे, अपकर्षण तो चल रहा है। अपकर्षण कब तक चलेगा? जब तक नीचे दो आवली रहेगी तब तक अपकर्षण। तो कहते हैं कि प्रथम स्थिति उसमें दो आवली अवशेष रहने पर आगाल प्रत्यागाल की विच्छित्ति होती है। प्रत्यागाल इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पुरुष वेद का उदय चल रहा है, पुरुष वेद का बंध भी हो रहा है, इसलिए प्रत्यागाल यहाँ कह सकते हैं। प्रत्यागाल ने उदयावली के ऊपर के निषेकों के कुछ परमाणु ऊपर भी जाते हैं अंतर को लांग कर, उसको कहेंगे प्रत्यागाल। अब वो अभी रुक गई, जब यहाँ प्रथम स्थिति दो आवली प्रमाण शेष रही तब ये आगाल और प्रत्यागाल रुक जाएगा। दो आवली अवशेष रहने पर वहाँ प्रथम समय से लेकर पुरुष वेद की गुणश्रेणी निर्जरा का विच्छेद होता है। गुणश्रेणी निर्जरा का जो गुणित प्रमाण में हो गई उसकी निर्जरा तो हो जाएगी, परंतु अभी गुणश्रेणी रूप से जो देने का कार्य चल रहा है ना, एक भाग प्रमाण उदयावली में और उसका बहुभाग गुणश्रेणी में, ऐसे यहाँ नहीं होगा कुछ। वहाँ उदयावली से बाह्य ऊपर के निषेकों में स्थित द्रव्य को उदयावली में दिया जाता है, ऐसी उदीर्णा पाए उसको उदीर्णा कहेंगे। ऊपर द्वितीय स्थिति में से कोई परमाणु नीचे नहीं आ रहे, परंतु दो आवली काल शेष रहा है तो ऊपर के आवली के परमाणु नीचे के आवली में यानी उदयावली में आकर मिलते, इतना कार्य वहाँ हो जाता है। इनका लक्षण पूर्वोक्त जानना। अब 265 की अंतर करने के पश्चात हास्यादि छह नौकशान का द्रव्य पुरुष वेद में संक्रमण नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने देखा था अनुपूर्वी संक्रमण में पुरुष वेद और हास्यादि सब संज्वलन क्रोध में संक्रमित हो, वो अनुपूर्वी संक्रमण, क्योंकि यहाँ अनुपूर्वी संक्रमण पाया जाता है। यानी जिस समय पुरुष वेद और हास्यादि छह इनका उपशम चल रहा है उस समय उनका संक्रमण किसमें हो रहा है? संज्वलन क्रोध में। ये बात इसमें यानी हास्यादि जो छह नौकशा है वो पुरुष वेद में संक्रमित नहीं हो रहे हैं। अनुपूर्वी संक्रमण वो तो हमने बताया कौन किसमें संक्रमित होता है बिल्कुल निश्चित है, तो वो सारे ही संज्वलन क्रोध में संक्रमित हो रहे थे इस यहाँ पर। अब 184 पर आते हैं। देखो 184 पुरुष वेद के पूर्वोक्त नव समय प्रबद्ध जो नहीं उपशमाए थे, हमने यहाँ देखे थे ना जो नहीं उपशमाए थे B4, C4, D4 वगैरह जो कुछ नहीं उपशमाए थे उनको वेद रहित यानी अभी वेद का उदय मिट गया है तो वेद रहित ऐसे अपगत वेद, अब इसको क्या कहेंगे? इस जीव को या इस गुणस्थान को अपगत वेद गुणस्थान कहेंगे, अपगत वेदी जीव कहेंगे। तो अपगत वेद अनिवृत्तिकरण के प्रथमादि समयों में ऐसे उपशमा ऐसे ने आगे कहे अनुसार जो हमने ऑलरेडी बोर्ड पर देखा है, पहले हमने देखा अभी ये पढ़ने में आसान रहेगा। पुरुष वेद के उपशम काल के द्विचरमावली के द्वितीय समय में बंधे हुए समय प्रबंध की जो एक फाली अवशेष रही थी, बोर्ड देख के बताएंगे कौन सी अवशेष रही थी? B4 है ना, तीन फाली तो उपशम ही थी, एक फाली बाकी रही थी। उसका अपगत वेद के प्रथम समय में उपशम होता है, वो पूरा हो गया। उसके होने पर वह समय प्रबद्ध सर्व ने पूर्ण उपशमित हुआ, यानी अभी बी का पूरा उपशम हो चुका। अपगत वेद होने के पहले समय में बी का पूरा उपशम, क्योंकि उसकी एक ही फाली बाकी रही थी, वो पूरा उपशमित हुआ। अवशेष दो समय कम दो आवली मात्र समय प्रबद्ध है, B4 को छोड़कर अभी दो समय कम दो आवली रही। वहाँ जिसकी बंधावली व्यतीत हुई है ऐसा जो समय प्रबद्ध उसका द्रव्य अपगत वेद के प्रथम समय में जितना उपशमाया उससे द्वितीयादि समयों में अंत फाली तक क्रम से असंख्यात गुना उपशमाया जाता है। अपनी भाषा में समझना है तो ये B4 तो यानी बी नंबर का वो तो पूरा उपशमित हो गया, अभी ये जो यहाँ उपशमने का कार्य चलता है तो ऐसा ही है पहली पाली से दूसरी पाली असंख्यात गुणा, तीसरी पाली असंख्य गुणा, चौथी पाली असंख्य, जो रिमेनिंग है वो भी असंख्यात गुणा क्रम से उपशमित होगी। ये क्रम सर्वत्र है, पहली पाली जो उसकी नंबर ऑफ परमाणु है, दूसरी पाली में उससे परमाणु की संख्या असंख्यात गुणा, तीसरे में असंख्यात गुणा, चौथे में असंख्यात। यह हमने चार पालियाँ बनाई। इसलिए इस तरह अन्य समय प्रबद्धों के द्रव्य में भी बंधावली व्यतीत होने पर प्रति समय असंख्यात गुणा क्रम सहित उपशम फालियों का द्रव्य जानना, यानी उसका प्रमाण जानना, परमाणुओं की संख्या जानना। एक नवक समय प्रबद्ध एक आवली काल में उपशमता है। ये नवक समय प्रबद्ध को उपशमने के लिए इतना काल लगता है, एक आवली। बंधावली में कुछ नहीं होता और वो बंधावली गिनना है बंध के समय से लेकर, छोड़कर नहीं लेकर, तो बंध के समय से लेकर एक आवली बंधावली है और एक आवली में उपशमने का कार्य पूरा हो जाता है। इसलिए वहाँ एक समय प्रबद्ध की आवली प्रमाण फाली जानना है। आवली प्रमाण फाली ने आवली में जितने समय है उतनी फाली। हमने यहाँ आवली चार समयों की मानी थी समझाने के लिए, तो हमने हर एक की चार चार फाली की। बरोबर समझ में आता है कि बहुत कुछ गहरा हो रहा है ना? तो ब्रैकेट में लिखा है देखो, आवली के जितने समय उतनी फालियों की संख्या जानना। इस तरह ऐसा ही पढ़ने से समझ में नहीं आता है। हम घर में भी पढ़ते हैं ना, तो ऑन द स्पॉट कुछ ऐसा सोचते हैं, तो हम तो पार्टी पर ऐसे चित्र बनाते हैं समझाते हैं। हमारी सीडी सुनने वाले बहुत कंप्लेन करते हैं, आप उसकी डीवीडी क्यों नहीं बनाते? अरे क्या क्या बनाए, क्या क्या करें, हाँ डीवीडी वो शूट करना और रखना क्या कहाँ की बात है। सीडी बनाने में भी रोज के 3.5 घंटों की रिकॉर्डिंग होती है हमारी, कहाँ रखे, आपके घर में भेज देंगे एक एक करके। हाँ आपका ये प्रश्न है कि जो अंतिम, क्योंकि अंतिम अंतर्मुख में उतना का उतना बंद हुआ एक ही समय में नहीं, अंतिम क्योंकि स्थिति बंद का अंतर्मुख तक उतना का उतना होता है, तो अंत अंत में जो हुआ था अभी नवक समय अंतिम आवली में का हुआ, अंतिम जो अंतर्मुख में बंधा हुआ ये नवक समय प्रबद्ध, उनका कहना उसकी स्थिति कितनी बंदी थी, तो 16 वर्ष की बंदी थी। बरोबर, देखो इस तरह अवगत वेद के प्रथम समय से लेकर एक समय कम दो आवली मात्र काल में, हमने यहाँ 7 समय देखे थे, आपको समझाया 7वें समय में पूरा उपशमने का कार्य पूरा हो गया। 7 समय ने 4 समय की एक आवली, तो 7 समय ने एक समय कम दो आवली काल में पुरुष वेद का सर्व नवक समय प्रबद्ध उपशमाया जाता है, ऐसा तो उपशम विधान जानना, यानी वो पहले तो उपशमित हुआ ही हुआ, जो बाकी बचा हुआ था वो बाद में जो नवक समय प्रबद्ध है वो एक समय कम दो आवली काल बाद तक उपशमाता रहा, ये उसका अर्थ होता है। अब जब ये उपशमाने का कार्य चल रहा है ना, तो उस समय वो संज्वलन क्रोध में संक्रमित होने का भी कार्य हो रहा है, ऐसा ये जो नवक समय प्रबद्ध भी उपशमित होता है उसमें से कुछ द्रव्य तो वो भी संक्रमित हो जाएगा। उसके लिए अलग अलग वो भागा का प्रमाण वगैरह लिया है, तो वो उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें यही बात समझाई है कि जो यहाँ बंधा हुआ समय प्रबद्ध है, तो वो समय प्रबद्ध के परमाणु कितने लेना, क्योंकि हमें जो कितने प्रमाण में परमाणु संक्रमित होते हैं ये निकालना है, तो अलग अलग समय में बंधे हैं, तो अलग अलग समय में बंधे हैं तो उसका प्रमाण घटते जाएगा कि बढ़ते जाएगा। मेरा प्रश्न फिर सुनो, अभी यहाँ उसका नाम देते कुछ भी देखो ना, यहाँ EFGH, तो ई समय में बंधने वाला जो समय प्रबद्ध है वो बड़ा है के एफ के जी के एच के, कोई नीचे कौन सा समय प्रबद्ध बंधा बड़ा है कौन सा छोटा है ये हमें नक्की करना है। हाँ बोलो बोलो, एच वाला क्या होगा, सबसे बड़ा, यानी वो समय प्रबद्ध बड़ा होगा, क्यों, उसमें क्या बंधे की बात है, हमने बंधने की बात चल रही, उपशमने की बात नहीं हो रही, बंधने की बात है। हाँ समान होगा, कोई भी बात कुछ तो हो सकता है ना, छोटा होगा या बड़ा होगा या समान होगा, कुछ तो होगा। समय प्रबद्ध योग के अनुसार होता है और योग गुणस्थानों के अनुसार या विशुद्धि के अनुसार नहीं बदलता। योग कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, उतना भी रह सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कोई भी समय प्रबद्ध बड़ा या छोटा हो सकता है। तो इसमें जो समय प्रबद्ध में जो देखो नीचे यही लिखा है, देखो यहाँ जो हम लिखे ना, कोई असंख्यात गुना घटता, कोई संख्यात गुना घटता, कुछ इसमें यानी उसमें कोई चतुस्थानी हानि होती, क्योंकि योग में कितना योग है वो असंख्यात में नापते, कर्मों की संख्या जैसे अनंत में नहीं नापते। तो योगों में असंख्यात का वेरिएशन होता है, जितना योग है उससे संख्यात गुना योग हो सकता है, असंख्यात गुना हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, हीन भी हो सकता है। तो इसलिए समय प्रबद्ध में भी इतने ही वेरिएशन हो गए, कोई भी समय प्रबद्ध छोटा, कोई भी बड़ा, कोई भी असंख्या हो सकता है कि यहाँ जितना समय प्रबद्ध हुआ दूसरे समय में असंख्या गुना बड़ा समय प्रबद्ध हुआ, ये हो सकता है। तीसरे समय असंख्या गुना हीन हुआ, ये भी हो सकता है। विशुद्धि से प्रदेश बंध में कोई अंतर नहीं पड़ता। वो बात अलग, यहाँ योग यानी वो तो कितनी उसमें योग के अविभाग के पीछे कितने होते हैं उसके प्रदेश बंधन के कारण रूप जो है उसकी बात है। जितना योग ज्यादा उतना समय प्रबद्ध ज्यादा, योग दो गुना हो जाए तो समय प्रबद्ध दो गुना, योग असंख्यात गुना हो जाए तो समय प्रबद्ध असंख्यात। हमने योग मार्गना में इसकी बहुत चर्चा की थी। यहाँ आपका ये प्रश्न है, समय प्रबद्ध में अनंत परमाणु होते तो अनंत गुणा नहीं क्या हो सकता है? परमाणु अनंत है, वो अनंत से असंख्यात गुणा हो सकता, क्योंकि योग अनंत गुणा नहीं हो सकता, योग असंख्यात ही गुणा हो सकते हैं, क्योंकि योग में असंख्यात ही अविभाग प्रतिच्छेद है, वो अनंतों में उसकी बढ़ोतरी नहीं होती। जो मूल में असंख्यात है उसमें अनंत बना नहीं बनता, योग असंख्यात में है उसकी जो शक्ति के नाम वो अनंत गुणा नहीं हो सकता, समय प्रबद्ध भी अनंत गुणा नहीं हो सकता। समय प्रबद्ध इटसेल्फ अनंत परमाणु होता है, वो अनंत से असंख्यात गुणा होता है, अनंत गुणा नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, ये चतुस्थान पतित वगैरह बात हमने पढ़ी नहीं, परंतु अपनी भाषा में समझने की कोशिश की। 185 पेज पर यही बात बताई, देखो, क्योंकि चतुस्थान पतित हानि वृद्धि रूप योगों द्वारा, चतुस्थान हानि वृद्धि है, योग में कितनी हानि हो सकती है? संख्या भाग हानि, संख्या गुणा हानि, असंख्या भाग हानि, असंख्या गुणा हानि, ऐसे ही वृद्धि भी ऐसे, इसको कहेंगे चतुस्थान। जो अनंतों में होते वो षट स्थान होते, वो नहीं, यहाँ योग असंख्यात में है उसके हानि वृद्धि में संख्यात असंख्यात में इतनी नहीं होती, इसलिए चतुस्थान बताए उसके। तो उसके द्वारा बंधे हुए समय प्रबद्धों का द्रव्य हीनाधिक पाया जाता है, इसलिए संक्रमण द्रव्य के भी चतुस्थान पतित हानि वृद्धि का अनुक्रम पाया जाता है। ये जो नए नए बंधे हुए समय प्रबद्ध है उसमें उस प्रदेशों की संख्या हीनाधिक है, तो संक्रमित होने वाला द्रव्य भी हीनाधिक होगा। उसको ऐसा नहीं कहते नव समय प्रबद्ध के बारे में, पूर्व में जो बंधे हुए पड़े थे तो सभी के पूरे द्रव्य का हिसाब से हमने संक्रमण, पहले समय में संक्रमण हुआ, दूसरे समय में संक्रमण हुआ, ऐसा कहा था। अब नवक समय प्रबद्ध में ऐसा रेशो नहीं लगा सकते, क्योंकि नए नए बंधे हैं, उसकी एक एक थाली उपशमित होती है, तो हर एक का द्रव्य हीनाधिक है तो उसका संक्रमण द्रव्य भी हीनाधिक होगा, इसलिए उसमें कोई ऐसा रूल नहीं बना सकते। बस इतनी बात यहाँ बताना चाहते। अब आगे 267 की टीका, अपगत वेद के प्रथम समय में, यानी सवेद भाग निकल गया भी अपगत वेद का पहला समय है, संज्वलन चतुष्क का तो अंतर्मुहूर्त कम 32 वर्ष मात्र स्थिति बंध है। सवेद भाग के अंतिम समय में कितना बंध हुआ था? 32 वर्ष। अभी यहाँ अपसरण हुआ, अभी 32 वर्ष माइनस अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त कितना ही बंध होता रहेगा, क्योंकि 32 वर्ष स्थिति बंध था, उसमें से एक बार स्थितिबंधानुसरण करके अंतर्मुहूर्त घट गया, अंतर्मुहूर्त तक अभी इतना का इतना बंध हुआ, 32 वर्ष माइनस एक अंतर्मुहूर्त। अन्य कर्मों का पूर्व स्थिति बंध से संख्यात गुणा घटता, संख्यात गुणा घटता करते संख्यात वे भाग प्रमाण वहां बंद होगा। पूर्वोक्त प्रकार से हीनाधिक क्रम सहित संख्यात हजार वर्ष मात्र स्थितिबंध होता है। पूर्वोक्त प्रकार से हीनाधिक क्रम का अर्थ क्या है? तीन घाती का अल्प, विषय का संख्यात गुणा और वेदनीय का उससे विशेष अधिक या रेड गुणा, कुछ ये पूर्वोक्त प्रकार। अब अपगत वेद हुआ तब यहाँ तो हमने देखा कि नवक समय प्रबद्ध का भी उपशम चल रहा है, कुछ संक्रमण भी हो रहा है। अब यहाँ से और क्या वो क्रोध का भी उपशमना वगैरह चालू हो जाएगी नहीं यहाँ, उसकी बात अब यहाँ पे 268 की टीका नीचे का पैराग्राफ पेज नंबर 185। प्रथम समयवर्ती अपगत वेदी संयमी, अपगत वेद के प्रथम समय से लेकर, अपगत वेद यानी जिसका वेद का उदय अभी मिट गया है वो अपगत वेद, उससे वहां से लेकर पुरुष वेद के नवक समय प्रबद्ध सहित, यानी उनका तो चल ही रहा है संक्रमण, और भी किसका चलेगा? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, इन तीनों क्रोधों को उपशमाता है। सवेद भाग तक तो उसने तो पूर्व बदल और सात नौकशाएं पुरुष वेद और छह नौकशाएं का उपशमने का कार्य किया। पुरुष वेद के कुछ समय प्रबद्ध जिसको हम नवक समय प्रबद्ध कहते हैं वो उपशमाने के बाकी रहे, वो नवक समय प्रबद्ध प्लस अप्रत्याख्यानावरण क्रोध प्लस प्रत्याख्यानावरण क्रोध प्लस संज्वलन क्रोध, इन सबको उपशमाने का कार्य यहाँ से शुरू होता है। ये यहाँ का कहेंगे नवक समय प्रबद्ध तो एक समय कम दो अवधि में उपशमित हो जाएगा, पर ये बाकी तीन प्रकार के क्रोध को उपशमाने का कार्य अंतर्मुहूर्त तक चलेगा, ये इसका कहने का मतलब है। फिर से देखो यहाँ, वहाँ यहाँ उदय किसका भी हमने संज्वलन क्रोध का उदय है ऐसा मान लेते, वहाँ उदय रूप संज्वलन क्रोध की प्रथम स्थिति पूर्व में अंतरकरण के प्रारंभ में अंतर्मुहूर्त मात्र स्थापित थी, उसके ऊपर अंतर कर दिया था, उसका प्रमाण पुरुष वेद की प्रथम स्थिति से साधित था, नेचुरली, क्योंकि अभी अपगत वेद ही हुआ यानी उसकी प्रथम स्थिति तो पूर्ण नष्ट हो गई है, और अभी क्रोध का उदय चलेगा तो उतना अधिक उसका प्रमाण था, ये नक्की हो गया यहाँ पर। उसमें से यानी जितना पुरुष वेद का काल था उतना क्रोध का भी उतना तो उसके भी निशे गल गए, पुरुष वेद का उदय चल रहा था तो क्रोध का भी उदय चल ही रहा था उस समय, तो उसके भी उतने निषेध तो गल ही गए हैं, अब उसके कुछ बाकी है। उसमें से व्यतीत होने के पश्चात जो अवशेष रहा उसमें से एक समय अधिक आवली मात्र अवशेष रहे वहां से पहले यहां क्रोध की प्रथम स्थिति जानना। देखो क्या कहना चाहते हैं, जब अंतर किया था तो पुरुष वेद की प्रथम स्थिति अंतर्मुहूर्त प्रमाण जितना पुरुष वेद का उदय काल था, और क्रोध की भी प्रथम स्थिति बनाई थी वो भी कितनी है, तो जहां तक तो क्रोध का उदय होने वाला था बंद होने वाला था उसमें एक आवली एक्स्ट्रा बनाई, वो आवली को अभी उसका उदय नहीं होने वाला है, जब क्रोध की बात चलेगी उसका उदय अंतिम आवली में उसका उदय नहीं होगा, वो क्रोध रूप से रहेंगे परमाणु, उसको उच्चिष्ठावली कहेंगे, परंतु बाय दैट टाइम फिर मान की रचना हो जाएगी, नए निषेक तैयार हो जाएंगे मान के, और वो एक एक निषेक वो क्यूक्त संक्रमण द्वारा उदय में आकर नष्ट हो जाएगा, उसको कहेंगे उच्चिष्टावली। इसलिए उस एक आवली को यहाँ प्रथम स्थिति नहीं भी गिनेंगे क्योंकि उसको उच्चिष्टावली कहने वाले बात में, जब अंतर किया था तो जितना क्रोध का रिमेनिंग था हाल उदय का उतनी प्लस एक आवली इतने निषेक छोड़कर ऊपर अंतर कर लिया। हमने अभी पहले बात की थी ना उसकी कितना अंतर किया क्या, क्योंकि उच्चिष्टावली अवशेष रहने पर उच्चिष्टावली ने अंतिम आवली प्रमाण जो निषेक वो क्रोध रूप से उदय में नहीं आने वाले, एक एक निषेक मान रूप होकर उदय में आने वाला है, इसलिए उसको कहेंगे उच्चिष्टावली। प्रथम स्थिति नाम नहीं पाता, जब उच्चिष्टावली रहेगी तब हम उसको क्रोध की प्रथम स्थिति नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे वो उच्चिष्टावली, तब जा वो बड़ी थी नहीं, वो बहुत बड़ी, उसका जितना उदयकाल अभी बाकी है उतनी बड़ी है, उसका उदयकाल भी अंतर्मुख है तो उतना डिफरेंस उसमें है, प्लस आवली काल एक्स्ट्रा है उसको। वो आवली जो लास्ट आवली है वो उच्चिष्ट आवली रूप से रहने वाली है, वो अपने रूप से उदय में नहीं आएगा, उसका है तो क्रोध के परमाणु, परंतु वो अंतिम आवली वाले जो क्रोध के निषेक है वो क्रोध रूप से उदय में नहीं आएंगे। तब मान की प्रथम स्थिति तैयार होगी नहीं, जो अभी नहीं थी, अंतर्मूल प्रमाण निषेक की रचना हो जाएगी नए ऊपर से नीचे स्थिति में से, मान के परमाणु नीचे आकर वो सारी निषेक रचना हो जाएगी, वो जो गुणशैली वगैरह जो कुछ है उस प्रमाण में हो जाएगी, और तब वो क्रोध का एक एक निषेक मान रूप होकर उदय में आएगा, उसको कहेंगे उच्चिष्टा। देखो पुनश्च जैसे आगे मानादिक की नवीन प्रथम स्थिति का स्थापन करेंगे, अभी बताएंगे वो करेंगे, बताए ना मान कहाँ है, अभी मान का द्रव्य तो ऊपर पड़ा है सारा, द्वितीय स्थिति में पड़ा है, अभी तो क्रोध की प्रथम स्थिति बनाई थी, मान उदय रूप नहीं था तो मान का तो अंतर बड़ा कर दिया था, और आवली प्रमाण नीचे था वो तो कब का गल चुका है, अब मान कहाँ पड़ा है, द्वितीय स्थिति में पड़ा है। क्रोध की जब उच्चिष्ठावली बाकी रहती है तो मान का जितने काल तक उदय रहेगा और प्लस एक आवली, इतने मान के परमाणु नीचे आकर नए निषेक तैयार हो जाएंगे। ये कोई अद्भुत रचना हो चुकी है, ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते ऐसा कैसे क्या क्या होता है, है ना। देखो जैसे मानादिक की नवीन प्रथम स्थिति, उसकी प्रथम स्थिति कहाँ थी, वो अनुदय रूप था अभी तक, पहले क्रोध के उदय से श्रेणी चढ़ने का कार्य हुआ था, सातवें में आठवें में नौवें में इतने काल तक तो क्रोध का उदय चल रहा था, अब क्रोध की उच्चिष्टावली बाकी रही, अब क्रोध का उदय भी मिट गया, क्रोध का बंध भी मिट गया। जब तक क्रोध का उदय था और बंद भी था, संज्वलन का क्रोध मान मायालोक चार का बंद था, अब जब उच्चिष्टावली बाकी रही उसी समय में ऊपर से मान के परमाणु नीचे आकर नए निषेक रचना तैयार हो जाते, अंतर्मूल प्रमाण। अब बंद किसका होगा, मान का उदय होगा यहाँ पर, और मान माया और लोक का ही बंद होगा, अब क्रोध का बंद नहीं होगा। वो ऊपर पड़ा है उसका उदय नहीं होगा, क्रोध का नवक समय प्रबद्ध है, वो बाद में उपशमित हो जाएगा, जैसे पुरुष वेद का हुआ वैसे क्रोध का भी होगा, हरेक में वो ऐसा लगेगा। यहाँ यानी जब क्रोध की पूरी उपशमित हो गई है उस समय पोजीशन क्या है, क्रोध का उदय भी मिट जाने वाला, क्रोध की उच्चिष्टावली बाकी है क्रोध रूप से, क्रोध की द्वितीय स्थिति में सारे उपशमित हो गए एक्सेप्ट नवक समय प्रबद्ध, नवक समय प्रबद्ध तो उपशमित होने वाले, और उच्चिष्टावली तो मान रूप से उदय में आने वाली। हाँ आपका प्रश्न है, जितना क्रोध का बनाया था उतना ही मान का होता है, हर एक का अपना अपना वेदक जो काल है, क्रोध का वेदक जितने काल क्रोध का वेदक काल का जो समय है उतनी क्रोध की प्रथम स्थिति बनी, अब जो मान का वेदक काल जो है उतनी मान की प्रथम स्थिति बनी, वो अंतर्मूर्त ही हो उसमें हिला दिखता है, उसकी अभी चर्चा छोड़ देते हैं, कौन सी बड़ी छोटी उसकी बात छोड़ो। जब क्रोध की प्रथम स्थिति गलते गलते अभी निकली उदय होकर सब गल गए, एक आवली बाकी रही अंतिम, उसको उच्चिष्टावली कहेंगे, उसको अभी प्रथम स्थिति नहीं कहेंगे। अब प्रथम स्थिति कौन सी होगी, जो मान पूरा ऊपर पड़ा था द्वितीय स्थिति में, वहाँ बहुत सारे परमाणु नीचे आकर निषेक रचना तैयार हो जाएगी, प्रथम स्थिति बनेगी नहीं, जो नहीं थी वो तैयार हो जाएगी एक समय में, हो एक समय में। देखो अभी पढ़ते उसकी बात, ये जब तक ख्याल नहीं आता क्या हो रहा है तो कहाँ से आए मान, क्या हो रहा है उसकी, ऐसा ऐसा लगता है ना, और अब तक क्यों नहीं आए नीचे, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, आचार्य कहते ऐसा ही होता है क्यों होता है ऐसा मत पूछो कहते मान माया लोग सबका अंतर पड़ गया था, अकेले क्रोध का उदय से श्रेणी चढ़ा था इसलिए क्रोध की प्रथम स्थिति, अब क्रोध का उदय का लिमिट है, उसका वेदक काल है नहीं जब तक क्रोध का उदय हो सकता है, यहाँ तक तो उसका उदय है, अभी इसके आगे उसका उदय नहीं है, बंद भी नहीं है, अब यहाँ कोई परमाणु भी नहीं, अब मान के परमाणु नीचे आकर निषेक रचना तैयार हो जाएगी, अंतर्मूल परमाणु उसके निषेक बनेंगे नए, हाँ आगा लेने अभी वहाँ नीचे कुछ है ही नहीं उसका, अंदर क्या पर नीचे कुछ था ही नहीं उसका, उसकी पूरी स्थिति बनेगी, पूर्ण रूप से प्रथम स्थिति तैयार होगी, सारे निषेक तैयार होगी। तो निषेकों में कितना द्रव्य देना जाता है हम देखते हैं ना, निषेक कितने बड़े बड़े हो गए, इतना सारा द्रव्य ऊपर से नीचे आ जाएगा, उसकी प्रथम स्थिति बनेगी और फिर उसका ऊपर उक्षमने का कार्य चलेगा और नीचे उसका फिरने का कार्य चलेगा। ऊपर द्वितीय स्थिति में पड़े थे, उपशमित नहीं थे, उपशम तो केवल उपशम कब शुरू हुआ, अंतर किया तो किसी का उपशम नहीं था, उसके बाद नपुंसक वेद का उपशम सबसे पहले किया, फिर स्त्री वेद का उपशम किया, फिर पुरुष वेद हास्यादि इच्छा का उपशम किया, फिर क्रोध का उपशम किया, तब तक वो पड़े रहे थोड़ा आराम कर रहे, तब तक अभी कुछ नहीं नीचे आ रहे। अब जाके मान के निषेकों में से परमाणु नीचे आकर पूरे निषेक रचना तैयार हो जाएगी। हाँ नीचे से उदय रूप कार्य हो रहा है और उसी समय वो आकर्षण वगैरह सब हो रहा है, केवल स्थिति कांडक नहीं हो रहे, थोड़ा संक्रमण भी हो रहा है, संक्रमण अनुपूर्वी संक्रमण वहां पर भी चलेगा, जो मान के है परमाणु वो आगे माया रूप भी हो गई। ये सब कार्य एट ए टाइम, अभी समझाने के लिए एक एक प्रोसेस एट ए टाइम समझा सकते हैं, पर होने में तो सारी बातें एट ए टाइम हो रही है। अब ये तो क्रोध से ही चलने वाले की बात है, अभी तो इतना समझे तो बहुत है। बाद में जो विशेषता है उसकी बाद में चर्चा करेंगे, जो चालू विषय है उसको समझते समझते पूरा समझेंगे लास्ट तक, तो फिर जो कुछ अन्य बातें होगी उसकी चर्चा बाद में करेंगे।
नहीं, उसमें
हाँ आपका ये प्रश्न है, मान लेते हैं अभी तो गया ना, हाँ जब कोई बात नहीं, जब यानी पहले अंतर पड़ा था, वो जीव किस वेद से और किस कषाय से चढ़ रहा था, क्रोध कषाय से और पुरुष वेद से, तो मान माया लोक ये अनुदय रूप प्रकृति आती है, उसका उदय नहीं था, तो उसका नहीं उदय नहीं था तो उसके आवली प्रमाण नीचे छोड़कर पूरा बड़ा अंतर कर दिया। अंतर क्या है, वो द्वितीय स्थिति में सारे परमाणु पड़े हैं, अंतर वाले परमाणु कुछ बंधने वाले के साथ ऊपर गए थे, कुछ उदय रूप प्रथम स्थिति में गए थे, वो सब बातें कौन कहाँ गए उसकी हमने चर्चा की। जिसका उदय नहीं है उसकी कोई स्थिति बनी ही नहीं थी प्रथम स्थिति, केवल जिसका उदय है ऐसे संज्वलन क्रोध और पुरुष वेद, हमने उनको मान लिया गया, हमें उन दोनों को लेकर बात कर रहे, इनकी प्रथम स्थिति बनी थी, पुरुष वेद की थोड़ी क्योंकि उसका उदय जल्दी मिलता है और क्रोध की थोड़ी बड़ी, दोनों अंतर्मुख। अब पुरुष वेद और संज्वलन क्रोध दोनों का ही उदय चल रहा है, दोनों का एक एक निषेक गल रहा है, तो उस समय क्या हुआ, पहले में नपुंसक वेद, उसी काल में नपुंसक वेद का उपशम हुआ, फिर स्त्री वेद का उपशम हुआ, फिर और काल बीत गया तो पुरुष वेद जिसका उदय भी चल रहा है, बंध भी चल रहा है और उसका उपशम भी चल रहा है द्वितीय स्थिति का, और हस्तादीक्ष एट ए टाइम ये सब बातें हो रही, ऐसे होते 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 पुरुष वेद का उदय का अंतिम समय है, वहां तक पुरुष वेद का बंध भी था, हास्यादि छह तो सभी उपशमित हो गए, पर पुरुष वेद के नए नए बंधे वाले वो पड़े हैं जिसको हम नव समय प्रबंध करें। अब इसके आगे क्रोध का अभी भी अंतर्मुख काल बाकी है उदय, अभी क्रोध का उदय चलेगा, ऐसे उदय होते होते क्रोध का बंध, क्रोध मान माया लोक चारों का बंध होगा, उदय क्रोध का है, बंध चारों का हो रहा है, तो चारों का बंध होते होते अभी अंतिम आवली बाकी रहेगी, उसका उदय नहीं होगा क्रोध का, उसको उच्चिष्टावली कहेंगे। जब उच्चिष्टावली यानी आवली मात्र निषेक बाकी रहे क्रोध के, क्योंकि उसको इतना एडिशन करके ही वो उसकी प्रथम स्थिति बनी, अंतर जब किया था तो जितना रिमेनिंग क्रोध का उदय काल है और जो आवली उच्चिष्टावली इतना मिलकर वो प्रथम स्थिति में रखा था और ऊपर अंतर किया था। अब ये आवली प्रमाण बाकी रहा जिसको हम उच्चिष्टावली कहेंगे। अब यहाँ मान के माया के कोई परमाणु कुछ नहीं है बाकी, वेद भी चला गया है, अब पोजिशन क्या है, आवली प्रमाण क्रोध के निषेक है, इसको हम क्रोध प्रथम स्थिति में, द्वितीय स्थिति अभी उपशमित हो गई उसकी, नव समय में तो कहा कि वो बाद में हो जाएगी, तो ये जो उच्चिष्टावली वो अपने रूप से क्रोध रूप से उदय में नहीं आने वाले, वो पड़े रहेंगे। अब क्या बात होगी, उसी समय में एक ही समय में मान के परमाणु, संज्वलन मान के परमाणु प्रत्याख्यान पूर्वक कहते हैं ऊपर ही पड़ेंगे, वो कोई नीचे नहीं आने वाला है। माया लोभी नहीं नीचे है, केवल संज्वलन मान के परमाणु नीचे आकर उसके अंतर्मूल प्रमाण निषेध की रचना तैयार हो जाएगी, उसकी प्रथम स्थिति बनेगी। कहाँ से? द्वितीय स्थिति में पड़े हुए परमाणु में से ये तैयार हो गई। अब क्या होगा? अब जो द्वितीय स्थिति में जो मान के परमाणु है उसका उपशमने का कार्य चलेगा। अभी क्रोध के जो नए नए बंधे हैं उसका उपशमने का कार्य चलेगा उसी समय, और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान मान भी वो उसमें संक्रमित होगा संतुलन मान में। ये सभी बातें चलेगी अभी, वो बताएंगे। अब यहां से पढ़ दे दो। गुणश्रेणी देती होगी, परंतु जब तक वो दो आवली बाकी नहीं तब तक वो गुणश्रेणी रूप से उसमें द्रव्य दिया जाए, यानी आगाल प्रत्याघात वहां पर भी चलेगा। जो बातें हमने क्रोध में पढ़ी थी वैसे ही वहां पर भी होगी। हर एक की अपनी अपनी प्रथम स्थिति तैयार होगी। मान के अंत में उसकी उच्चिष्ट आवली बाकी रहेगी, तब माया के परमाणु नीचे आकर उसकी प्रथम स्थिति बनेगी। अब यहाँ 268 को हम पढ़ेंगे। प्रथम समयवर्ती अपगत वेदी संयमी, अपगत वेद के प्रथम समय से, नहीं ये पढ़ा था लास्ट था, हम आगे के 186 पर आएंगे। लास्ट लाइन पढ़ के आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे मानादिक की नवीन प्रथम स्थिति का स्थापन करेंगे, आगे वो बताने वाले हैं, वैसे क्रोध की प्रथम स्थिति नवीन नहीं होती, क्योंकि वो पहले से ही क्रोध के उदय के साथ आया था। इसलिए वो जो प्रथम स्थिति तभी बनी कि बीच में अंतर करके उसने प्रथम स्थिति बनाई, कुछ नहीं था और उसने बनाई, ऐसा तो वहां नहीं हुआ जैसा अभी मान में होगा, क्योंकि संज्वलन क्रोध का ही उदय चला आता है। हमने ऐसा ही जीव लिया जो संज्वलन क्रोध से चढ़ा, इसलिए अंतरकरण में स्थापित प्रथम स्थिति का ही यहाँ ग्रहण किया। जो अंतरकरण करने के समय में जो क्रोध की प्रथम स्थिति थी वही यहाँ पर चल रही है। इस प्रथम स्थिति में आवली व प्रत्यावली, यानी दो आवली, ये दो अवशेष रहने पर उसी को कहीं कहीं उदयावली और द्वितीयावली भी कहते हैं, आवली प्रत्यावली भी कहते हैं। दो आवली शेष रहने पर आगाल प्रत्यागाल का, आगाल और प्रत्यागाल बंद हुआ। आगाल ने अंतर को लान कर परमाणु नीचे आना, प्रत्यागाल ने उदयावली के ऊपर के कुछ परमाणु ऊपर चले जाना, नए बंद के साथ वो बंद हो गया। और संज्वलन क्रोध की गुणश्रेणी निर्जरा का विच्छेद होता है। गुणश्रेणी निर्जरा कहने का मतलब है गुणश्रेणी रूप से, कभी कभी गुणश्रेणी रूप रचना को भी निर्जरा कहते हैं। आपने जो प्रश्न पूछा था ऐसे शास्त्र में भी आते हैं, यानी जो अपकर्षित द्रव्य उन्नीत प्रमाण में दिया जाता था वो अभी बंद हो गया। अभी केवल दो आवली नीचे है, ऊपर के आवली का द्रव्य उत्तीर्ण होकर नीचे के आवली में आएगा और कुछ नहीं होगा। जो ऊपर से आता था द्वितीय स्थिति में से अंतर लान कर और नीचे गुणित प्रमाण में दिया जाता था वो सब बंद हो गया। द्वितीय आवली के द्रव्य को उदयावली में देने रूप केवल उदीर्णानी पाई जाती है। अब यहाँ रुकते हैं, अभी थोड़ा मैं आपको जो कोई कुछ करेक्शंस बताऊंगी, दो मिनट बाकी है ना।
मान से चढ़ा होगा ये तो हमने रूप से चढ़ा हुआ है,
ये मान से माया से लोक से चढ़ने वाले में बहुत अंतर है, वो हम सबसे बाहर मिल रहे। जब क्रोध को पूरा उपशमाया ना और क्रोध को नीचे लाएंगे, बाद में मान की बात करेंगे। अभी मान की बात नहीं करते तो कोई कंफ्यूजन होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्रोध को समझते समझते ही पसीना छूट रहा है। अब बीच में मान को मत लाना। कहाँ तक सुन देंगे तुम्हें? 400 तक, 388 तो देखना चाहेंगे शायद। 400 रुपीज निकालो, 400 थोड़ा करेक्शन देख लो। क्रिएटिव बताया था ना, नहीं नहीं एक कम गच्छ बताया था ना, बताया था क्रिएटिव बताया था। एक्चुअली 400 पेज पर कुछ खास नहीं है, वहाँ एक फुल स्टॉप है, वहाँ बीच में नहीं था, नहीं देना था। 544 गाथा के ऊपर की लाइन, पेज नंबर 400, वहाँ लिखा है ना द्रव्य देना, और बाद में फुल स्टॉप है, वो नहीं चाहिए। द्रव्य देना सूत्र में नहीं कहा, एक पूरा वाक्य है। उसके आगे 423 423 पेज निकालो, 423 400 में गाथा के ऊपर की लाइन में देना के बाद वाला फुल स्टॉप नहीं चाहिए। 423 पेज निकाल, अपना हो गया समझ। हाँ देखो नीचे का पैराग्राफ सेकंड लाइन, सूक्ष्म पृष्ठियों में अनंत गुणा घटते क्रम से ही हुई है ना, वहां चाहिए गुणा निकाल दो और अनंत वहां भाग घटते क्रम से ही लेना चाहिए, यानी गुणा शब्द निकाल कर वा भाग इतना लिख दो, यानी अनंत वा भाग ऐसा उसका अर्थ होगा। फिर से ऐसे ही नीचे से दूसरी लाइन में, दृश्यमान द्रव्य अनंत गुणा घटते लिखा है ना, वहां अनंत वा भाग घटते समय वा भाग, गुणा के बदले वा भाग। 427 वाम भाग करो, गुणा के बदले वाम भाग। 427 पेज नीचे का पैराग्राफ देखो, लोक की विद्या संग्रह सृष्टि की प्रथम, वो तीन शब्द निकाल देना प्रथम स्थिति में, पेज नंबर 427 नीचे का पैराग्राफ पहली लाइन, प्रथम तीन स्थिति नहीं, प्रथम स्थिति चाहिए, वो तीन शब्द एक्स्ट्रा पड़ा है वो निकाल दो। और 428 पेज पर क्या था मतलब, नहीं 427 हो गया, 28 में कुछ नहीं, 48 है ना, तीन शब्द निकाल दो वहां से, तीन ना तीन लिखा है वो निकाल दो, 448 448 448 रात को बताएंगे जरा, लोगों को बहुत नींद आती है तभी बताएंगे बाकी। तीसरी लाइन, क्रोध की तीन संग्रह पृष्ठियों के नहीं को वेद कर, के बदले को चाहिए। पेज नंबर 448 तीसरी लाइन, क्रोध की तीन संग्रह पृष्ठियों के बदले को कर, तीसरी लाइन के बदले को। ऐसे एक जगह की दीर्घ हुआ है उसको रस्व करना है, वो जाने दो चले, उसमें अर्थ में कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। ये भी कुछ शब्द जोड़कर लेना है, उसमें भी कोई अर्थ में फर्क नहीं हुआ। 457 में वो कर्म आहार और आसन नवे शब्द जोड़कर चाहिए, और नहीं भी लिखे तो कोई अर्थ में डिफरेंस नहीं पड़ता। अभी हम यहाँ रुकते हैं, पेज नंबर ध्यान में रखना, 457 क्रम आ गए, बाकी करेक्शन रात को बताएंगे। थोड़े थोड़े अपने सुधार कर लेना, जब देखो ये प्रूफ रीडिंग करते हैं ना तो करते करते 20 बार हमने ये चेकिंग की है, आप इमेजिन करो इतना फिर इतना सिर चकरा जाता है, ऐसे हम पढ़ लेते हैं फिर ख्याल में नहीं आता कि ये कुछ गलत है, जब स्लोली स्वाध्याय करते हैं तब ये त्रुटियाँ ख्याल में आती हैं। अब यहाँ रुकेंगे हम, हाँ
अनुदय रूप निषेध फिर से समझाने क्या है, और ये सब प्रकृतियाँ चारित्र मौनीय प्रकृति ऐसा है ना, तो ये काउंटिंग में नहीं आ रहा,
हम समझाएंगे। 16 24